ओम शांति। हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी उपस्थित है। सभी कर्तव्यध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूंगी। आप किशोर अवस्था से ही बाबा के इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं और 54 ईयर्स से ज्ञान में चलते हुए 50 से भी अधिक वर्ष से आप मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, विशेष टोली डिपार्टमेंट, साथ ही साथ हमारी आर्य राजू एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत धार्मिक विंग है, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप देश विदेश में भी बाबा का संदेश देने हेतु सेवाएं की हुई है, भारत के सभी राज्यों में। और आपकी बहुत अच्छी कला है कि बाबा के बच्चों को कैसे बाबा के साथ योग के प्रयोग के द्वारा, योग की विधि के माध्यम से पठिया कराना और अनेक माना पठिया कराना और उनके आगे कैसे ले जाना, ये आपकी विशेष कला है। तो मैं आज के विषय के अनुरूप आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सभी को याद, योग और तपस्या के बारे में बताएं। आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा ने मुरली में सवेरे बहुत अच्छे एक स्लोगन में बात बताई, बच्चे याद की वृत्ति से पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाओ। तो याद क्या है, वृत्ति क्या है, तो वाइब्रेशंस कब बनते हैं, तो ये तीनों का स्पष्टीकरण चाहिए। नहीं तो बाबा मुरली में कहता है 8 घंटा याद करो, फिर कभी कहता है कि ऐसे योग लगाओ, फिर कहता है ऐसी तपस्या करो। तो 3 चीजें कहने में आता है, तो इसलिए तीनों का अलग अलग अर्थ भी है। तो याद, किसी को देखते ही याद आ गया, तो क्या याद? अगर हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, अपने भाई बहनों को देखते ही अगर हमारे मन में देखते ही विचार आए आज के बाबा के मुरली के पॉइंट इनको सुनाना चाहिए, तो यह है शुभ भावना, यह है मनसा सेवा। मन के अंदर उनको देखते ही देधारी और किसी भी प्रकार के विचार नहीं आए, क्योंकि तो ये ज्ञान हमारे लिए। तो किसी बाबा के बच्चों को देखते ही अगर हमारे मन में आज की मुरली के पॉइंट याद आया तो मन स्वच्छ है, तो उनकी भी सेवा हो गई। आपने उनको ज्ञान दान, सबसे बड़ा दान है। और उनको कहते भी ज्ञान देते समय आप क्या कहते हो, आज बाबा ने ये कहा था, तो बाबा की याद भी आ गई, मन भी स्वच्छ हो गया, स्वयं के मन के अंदर भी स्वच्छता और औरों की भी सेवा हो गई। एक में ही तीनों चीज आती है, याद, योग, सेवा, धारणा भी। ये कौन कर सकता है? जिसको, जिसके बुद्धि में आज की मुरली के पॉइंट याद है उसको कहते हैं हम धारणा। तो एक व्यक्ति की एक मुरली के पॉइंट अगर एक को सुनाते हो, एक में चारों आ जाता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सिर्फ एक पॉइंट। और इसके अंदर इतनी शक्तियां है, क्योंकि ये बुद्धि के अंदर धारण है। तो बाबा ने कहा स्वप्नों में भी बुरे स्वप्न आना भी महापाप है, तो स्वप्न को रोक सकते हो? हाँ, तभी बाबा ऐसी विधि बताता है। तो ज्ञान मैंने सुना, नोट किया, लिखे रखा नहीं। अगर आपको एक बहुत अच्छा बीज दिया और आपने उस बीज को रखा संभाल करके, कोई फायदा नहीं। उस बीज को धरती में डालो, उगेगा, पानी डालो, खाद डालो, कल फल लगेगा, फूल लगेंगे, फल मिलेगा। तो बीज को बोना है, तो ज्ञान दान करो। लेकिन उसके अंदर भी एक आता है, सिर्फ मुरली के पॉइंट रिपीट करना इतना नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में कि याद की वृत्ति और वाइब्रेशन, ये तीन शब्द आता है। याद क्या है? तो जैसे बच्चों को मां बाप बहुत प्यारे हैं, लेकिन मां की याद कब आती है? जब बच्चों को भूख लगी तो मां याद आती, खाना मां के पास है। तो यहां भी हमको शिव बाबा क्यों याद आता है? क्या चाहे उसके पास? वो सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्ति उसके पास है, ऑल माइटी अथॉरिटी कहा, सर्वशक्तियों का अधिकार है उसके पास। तो कौन सी शक्ति है वो? हां, शिव बाबा के पास, शिव बाबा पवित्रता का सागर है। सागर, नदी, तालाब में अंतर है ना, तो सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। आपके मन में एक विचार आएगा, प्रेम का भी सागर है, प्यार का भी सागर है। हां, ये शब्द भी जानना चाहिए, जो चार शब्द आते हैं। बाबा ही मुरली में कहता है किसी देहधारी को प्यार शब्द यूज किया जाता है, ये भौतिक शब्द है, और आत्मा को रूहानी स्नेह कहा जाता है। रूह आत्मा है, उसी वही प्यारी है, उसका और थोड़ा शब्द आता है रूहानी स्नेह। और वही अगर देवी देवताओं को बोलते हो प्रभु प्रेम कहा जाता है, वही प्यारी है, उसका और आगे जाते हो तो प्रभु प्रेम। और अंत में सबसे ऊंचा सर्वशक्तिवान, बाबा ने कल कहा द मोस्ट बिलवेड, तो उनके लिए वही चीज आनंद का सागर कहा, परम परम आत्मा, परमानंद कहते हैं। तो कौन, ये शब्द किसके लिए यूज करना है? किसी देहधारी को करते हो तो उसको प्यार कहते हैं, शरीर के साथ, भौतिक शब्द है ये। आध्यात्मिक शब्द रूहानी स्नेह, भक्ति के अंदर प्रेम कहा। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सर्वशक्तिवान शिव बाबा को आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, और भाग्य बनाने के। नहीं तो दुनिया में देख लो बहुत लोग सेवा करते हैं तो वो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बनते हैं। तो शिव बाबा ने यहां कहा मैं परमधाम से आकर बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता हूं। कैसे बनाता है? गृहस्थ में रहो का संसार में रहो, सब कुछ करते हुए भी, तो ऐसी एक सहज विधि बताता है। उस विधि से आप कोई भी सेवा करते हो पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। वो कौन सी विधि? नहीं तो दुनिया में हर जगह पर हर एक व्यक्ति गरीबों को खाना देता है, बीमार व्यक्ति को दवाई देता है, जिसको पाव नहीं है जयपुर फूट करके पाव बना के देता है, हर प्रकार की सेवा करते हैं। क्या वो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते? क्या अनेक जन्मों तक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाता है उनको? यहां प्रश्न आता है। तो ऐसी शक्ति शिव बाबा के पास है, तो वो परमधाम से सिर्फ इस संगम युग पर थोड़े से समय के लिए आता है और अपने अनन्य बच्चों को ऐसी विधि देता है जिससे सारे कल्प के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। उदाहरण के लिए देखो भाई जी क्या करते थे, ज्ञान सुनने से पहले भक्ति में कोई भी गरीब कोई साधु संत आता तो उनको दान करते थे। आज इनको ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला? रचता और रचना का ज्ञान। ये सारी रचना किसकी है? वो एक शिव बाबा की रचना है। ये सारे आत्माएं इस सृष्टि पर है, कहां से आए? परम धाम से आए। ये इसको ज्ञान मिला, रचता और रचना का ज्ञान। कल वही गरीब या वही कोई साधु सन्यासी उसके घर में सामने आते हैं, कल भी आता था, रोज आता है, आज वो खाना देते समय, दान करते समय उसके उसको याद आता है, अरे कल मुझे कहा था इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं वो परम धाम से आए हैं, क्या ये भी तो परम धाम से आया, ये भी शुभ बाबा का बच्चा है, ये समझ करके दान करता है, पद्मों की कमाई जमा होती है। क्यों? चमत्कार नहीं है, शुभ बाबा अविनाशी है, वो जो देता है अविनाशी देता है। इसलिए सदा शिव कहा, थोड़े दिन के लिए शिव नहीं है, सदा है वो। तो इसके लिए उस एक सर्वशक्तिवान शुभ बाबा को याद करते हुए कोई भी काम करो आप। देखो माताजी घर में खाना बनाती है तो उनको क्या, मेरे बच्चे को ये चाहिए, पति को ये खाना चाहिए। अगर यहां भी मधुबन में आने के बाद, सेंटर में जाने के बाद भी सेवा करते हो तो वहां खाना बनाते हो, सब्जी काटते हो, तो क्या याद आता है? शुभ बाबा को भोग लगने वाला है, बुद्धि में बाबा को भोग लगने वाला है, कर्म वही है। तब गीता में कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, ये मोह मिटाना चाहते हो आप, क्या करना चाहिए? तो स्मृति मतलब याद। अगर बुद्धि के अंदर ये ज्ञान, याद मन को नहीं रहता है, बुद्धि को बुद्धिवान कहा, बाबा समझदार बनाता है, सारी मुरली से एक शब्द कोई भी अगर बुद्धि को याद है, कोई मिला आप तुरंत वही बताएंगे, क्योंकि बुद्धि में धारणा है। तो आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हो, नहीं तो पोस्टमैन का काम हो गया, लेटर आया लेटर दे दिया, अगर लेटर आने के बाद उसको खोल के पढ़ करके बताते हो तो आपने और अपनी कमाई जमा किया। तो ज्ञान को भी स्पष्टीकरण करके दे दो, सिर्फ इतना ही सुनाया तो समझ में नहीं आता है। तो आज बाबा ने कहा याद, किसकी? एक शुभ बाबा की, जो सत्यम शिवम सुंदरम कहा। तो वो कौन? वो सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्तियां है? ये आठ शक्तियां है। देखो लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, धन की देवी है, सरस्वती के पास एक ही शक्ति विद्या देवी है। एक एक आत्मा को बाबा ने एक एक शक्ति दिया, तब का मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टरी है, अधिकार प्राप्त करो। सिर्फ बाबा की से महिमा नहीं, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आप शांति के सागर। हां बाबा कहता मुझे पता है, मैं भी ऐसा बनूं जैसे बाप, ऐसे मुझे भी पवित्रता का सागर का मैं बचाऊं। मास्टर अधिकारी, ये चीज चाहिए। अगर एक एक शक्ति को लेकर बाबा की याद करते हो, योग में बैठते हो, मंथन का, चिंतन और मंथन ये दो चीज है। चिंतन मन करता है, बुद्धि मंथन करती है, तो सामने शिव बाबा दिखाई नहीं देता है, बुद्धि के अंदर याद है आज बाबा ने ये कहा था। इसका अर्थ क्या? खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, तो बुद्धि को याद आ सवेरे बाबा ने ये कहा था, इसका अर्थ क्या है? ये बुद्धि अगर उसके पर मंथन करती है तो उससे वाइब्रेशन निकलते हैं, वातावरण बनता है। जैसे देखो दही के अंदर मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक हाथ से मसलो तो मक्खन बाहर आएगा। दोनों हाथ चाहिए, दोनों हाथ से, एक दो मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा दोनों हाथ से मसलते हो तब मक्खन आता है। मक्खन के अंदर ताकत है, शक्ति है। तो यहां भी ज्ञान सुनना, नोट करना, पढ़ना, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। हां कुछ भी नहीं कर सकते हो, कम से कम इतना भी करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि बाबा ने कहा सत्युग में सभी चाहिए, सभी राजाएं बन जाए, सेवा कौन करेगा, और भी चाहिए। तो इसके लिए अगर अपना ऊंच पद पाना चाहते हो, एक मुरली के पॉइंट बस, जो आपको अच्छा लगा। हर मुरली में चार सब्जेक्ट है, कोई ज्ञान, औरों को ज्ञान कैसे सुनाना, सेवा कैसे करना, योग कैसे कर, बाबा को याद कैसे करना, श्रीमत क्या है, धारणा क्या है, ज्ञान योग धारणा से चारों सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से कोई भी एक शब्द लिखना चाहिए। और सदा नहीं, 10-15 दिन लिख के रखो, फिर नहीं चाहिए, आदत बनेंगी। तो चलते फिरते हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बाबा के बच्चों से मिलते हैं, सिर्फ ओम शांति करके छोड़ना नहीं। एक रतन, ये ईश्वरीय रतन है, तो ये दान करो। तो कहा एक जन्मों के लिए धनवान बनेंगे, ज्ञान धन दान करना चाहिए। कौन करता है? जिसके बुद्धि में है, उसके नाम धारणा। अगर ये है, जब योग में बैठते हो सवेरे शाम या कर्म करते हो तो मन और बुद्धि दोनों चलती है। शिव बाबा कौन? वो पवित्रता का सागर है। मुझे शिव बाबा आपके जैसे पवित्र बनना है। कैसे बनना है? पवित्रता के ऊपर बाबा ने 50 साल मुरली सुनाया। खाना कैसे होना चाहिए? किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना भी महापाप है, तो कौन पवित्र खाना खिलाएगा? बाबा तो कहते हैं बाबा की याद में खाना बनाओ। अबे आप पूछो, खाना बनाते हो 15 मिनट आधा घंटा, कोई भी व्यर्थ विकल्प नहीं आएगा? कोई मन जीत है, विधि है। तो भाई जी, मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसकी सॉल्यूशन है, निवारण है। तो मुरली आजकल पहले से आती है, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल ऑन करो और गैस से थोड़ा दूर रखो, ज्ञान मुरली सुनते सुनते खाना बनाओ। अगर गीत सुनते हो, गीत किसका है? किसी देहधारी का है। ये ज्ञान किसका है? कोई देहधारी का नहीं, कोई शास्त्रों से नहीं आया, परम धाम से आया है। तो ये ज्ञान एक अग्नि है, पाप को भस्म करता है। ये ज्ञान एक ऐसा जल है, पाप को धोता है। ये बार बार खाना बनाते हो, सोने से पहले भी मोबाइल ऑन करके रखो, मुरली सुनते सुनते सो जाओ। योग में बैठते हो, अगर पहले योग नहीं लगता, कम से कम मुरली का चिंतन तो करो। याद नहीं है, सुनते सुनते तो करो। अगर गीत सुनते हो, वो मनुष्य के महावाक्य और भगवान के महावाक्य में अंतर है। नहीं तो रामायण महाभारत गीता वेद क्या नहीं है भारत के अंदर? उससे क्या हुआ? हमारी चढ़ती कला हुई? तो कम से कम थोड़े समय के अंदर हमारे बुद्धि में जो परम धाम से आया है, वो ज्ञान रतन अगर सुनते रहते हो, तब बाबा ने की याद, फिर उसका चिंतन चलता है। ये कैसे करना है, ये क्या करना है? फिर कोई मिला, उनसे लेन देन करते हो, ज्ञान की चर्चा करते हो, तो जो वाइब्रेशन बनते हैं तो बुद्धि के अंदर बनता है, बुद्धि मंथन करती है, तो वाइब्रेशंस फैलता है। इसलिए साइंस ने आज हमको एक छोटा सा मोबाइल दिया, एक मशीन दिया, उसके अंदर आप 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर यहां से आवाज अमेरिका जाता है। कैसे जाता है वो? कैसे गया? अपने नंबर तो यहां डाला, तो यहां से 7 समुद्र क्रॉस करके वहां तक कैसे गया? अब बाबा भी कहता है आप यहां बैठो, मुझे याद करो, तो बाप कहां है? परम धाम में। बाप दादा कहां है? सूक्ष्म तन में, इतने दूर है। तो हमारे असंकल्प वहां कैसे पहुंचेंगे? तो वो विधि है जो साइंस ने करके दिखाया। अभी हमारा चांस है कि हमें करना है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंग्लिश में। हिंदी में बाबा कहता है मन बुद्धि मेरे से लगाओ। कैसे लगाएंगे? भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। आत्मा को भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। जब योग में बैठते हो, मन पूछता है शिव बाबा कहां है, तुरंत बुद्धि कहते वो तो परम धाम में है। मन पूछता है शिव बाबा के पास क्या है, वो पवित्रता का सागर है। कैसे है वो? तो बुद्धि उसके ऊपर मंथन करती है। अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, अगर एक पवित्रता के ऊपर आप बाबा से बात करते हो, बाबा इसमें कैसे पवित्र रहे, इसमें कैसे रहे, इसमें कैसे रहे, आधा घंटा बाबा से बात करते हो एक ही पवित्रता के ऊपर, आपने पवित्रता की अग्नि जलाई। इसको कहा ज्वाला। इस अग्नि में अपवित्रता के जो संस्कार है वो भस्म हो जाएंगे। सिर्फ महिमा करने से नहीं, अभी आप इधर बैठे हो, बहुत तेज सूर्य बाहर आया हुआ है, आप यहां बैठने से सूर्य की किरणें आपके ऊपर नहीं पड़ती है। अगर आपको सूर्य की किरणें चाहिए तो शरीर को बाहर लेके जाओ, एक मिनट बैठो और आ जाओ, कुछ नहीं होगा। 15 मिनट, आधा घंटा बैठो, आप चाहो नहीं चाहो इस शरीर से पसीना निकालता है।
सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता
शांति। तो जितना समय जैसे हम धूप में बैठते हैं उतना पसीना निकलता है, तपाते हो शरीर को, ऐसे आत्मा को तपाना है। जितना समय सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ बुद्धि योग कहा, इसको कहा दिल से याद करो। दिल माना ये दिल याद नहीं करता है, बुद्धि का नाम दिल, दिमाग, मन। दिमाग बहुत चलाते हो, ये मन है। दिल शब्द जो कहा यह आत्मा के लिए, आत्मा का दिल बुद्धि है, तो बुद्धि योग है। जितना समय एक ही शक्ति ले लो, अगर कम से कम आधा घंटा पवित्रता के शक्ति के ऊपर शुभ बाबा से बात करते हो, बाबा इसमें पवित्र कैसे बने, ये कैसे करे, ये कैसे करे। अगर एक घंटा, अगर आप आधा घंटा एक घंटा, तो ये ज्वाला है, पवित्रता की अग्नि जलाए अपने, उसको बाबा कहते हैं। एक बीज पर, बीज रूप स्थिति का, एक के ऊपर एकाग्र करते हो, उसके बीच में दूसरे कोई नहीं आता है, नहीं तो क्या होता है, बुद्धि खाली है, बुद्धि के अंदर अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, आपको पूछ के नहीं आता है वो, बाबा ने आज का माया रावण कहां से आ रहा है, हमारे अंदर भरा हुआ है, वो आएगा। तो इसलिए बुद्धि के अंदर और कुछ नहीं आना चाहिए, तो पवित्रता की एक शक्ति पर बाबा से कम आधा घंटा। अगर बात करते हो पवित्रता की अग्नि जलाया, वो अग्नि अपवित्रता को भस्म करती है, इसको योग अग्नि कहा। सिर्फ बाबा की महिमा भक्ति में करते, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, शांति के सागर हो, ये महिमा हो गया। तो इस प्रकार अगर करते हो तो हम पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो वृत्ति से वातावरण का, वृत्ति माना बुद्धि, वृत्ताकार बार बार गोल गोल घूमती है। मन में विचार आया, चला गया, दूसरा आया, एक में ही मंथन करते हो तो शक्ति फैलती है। इसलिए कहा वृत्ति से वातावरण, और उसमें भी पावरफुल पावर सर्वशक्तियां है। तो ये योग में बैठते समय सवेरे 15 मिनट आधा घंटा, एक दो घंटा नहीं चाहिए, पूरी एकाग्र विधि पूर्वक आत्म भवन, इतना सत का आत्मा समझो, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन, इसी में टिकते हो। हम सारे विश्व को नहीं, पहले अपने शरीर को, क्यों पहले शरीर को निरोगी बनाओ, कहते निरोग पहले कहते हैं स्वपरिवर्तन, फिर औरों को। अगर मेरे मन में अच्छे विचार चलते हैं तो अच्छा रस निकलता है, खाने को हजम करता है। वही शर बैठ योग में बैठो, चलते फिरते किसी को देखो, गलत विचार चलते हैं तो एसिड निकलता है। तब कहते जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। हम सोचते नहीं है, किसी को देखते याद आएगा, अरे इन्होंने 2 साल पहले कितना गुस्सा किया था उसने जरूर, लेकिन आज उसको देखते ही मेरे अंदर गलत विचार आया, एसिड निकला। ये एसिडिटी बीमारी कहां से आई, मेरे विचार। इसलिए उसका निवारण क्या है, अगर हम बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, एक शब्द मुरली का लिख के अपने पास रखो, कोई दिखाई दिया याद नहीं है, कोई हर्जा नहीं, निकाल कर पढ़ करके बताओ, किसी का फोन आया बात करो, नहीं ऐसा नहीं तो जेब में लिख के रखो, पढ़ करके बता, आज शिव बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात बताया था। अगर उसको एक्सप्लेन करते हो और आपकी कमाई है। तो ये अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर दूसरों को देखते हुए, दूसरों के संबंध संपर्क में आते हुए, जहां अकेले भी हो, कोई पुरानी देहधारी के बातें याद न आवे, उसके लिए कुछ प्रबंध चाहिए। याद नहीं, कोई जानबूझ के नहीं करता है, कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन मन बुद्धि के अंदर इतना सारा सारे कल्प का ज्ञान भरा हुआ है। कौन सा ज्ञान है वो, हाँ 5 विकारों का ज्ञान भरा हुआ है, कर्म बंधनों का ज्ञान भरा हुआ है। अब बाबा ज्ञान देता है कर्म संबंध में कैसे हो, बंधन मुक्त हो, तो वो ज्ञान मुरली है। तो एक शब्द ही बहुत सारी मुरली याद रखो, आपको नहीं हमें भी संबंध नहीं, संभव नहीं है ये। तब कहा भगवान के एक बूंद के प्यासे रोज, और थोड़ा दिन 10-15 दिन लिख के रखो, क्यों आदत डालनी पड़ती है। आज के मोबाइल की दुनिया में ज्ञान ठहरेगा नहीं, आज इसका मैसेज आया, इसने ये कहा, इधर ये हुआ, उधर ये हुआ, वही सुनते भी है, वर्णन भी करते हैं। ऐसे समय परिस्थिति पर क्या करना चाहिए, निवारण चाहिए, परिस्थिति ऐसी है। हाँ उस परिस्थिति के लिए निवारण, समस्या बहुत है, हरेक के पास है, याद नहीं रहता है, किसको बताएंगे आप, अपने तकदीर को। तो बाबा निवारण देता, बच्चे एक शब्द लिख के रखो। अभी माताओं को भी बाबा बताता है, वो कहते लिख नहीं सकते है। तो बाबा कहता है साड़ी को गांठ बांध लो, ये गांठ क्यों बांधी है, अरे आज बाबा ने क्या कहा, निवारण देता है। सहज संसार में रहते हुए साधारण बच्चों को बाबा पढ़ाता है, उनको कहां से क्या बना देता है। तो ये है याद, याद से क्या होता है, अनेक जन्मों के विकर्म इस प्रकार विनाश कर सकते हैं। और वर्तमान में भी किसी को देखकर हमारे मन में, हम जानते हैं इनको देखते ही याद आएगा तुरंत, खाली अगर है 5 मिनट चलेगा, अरे उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, अगर कोई मिला उनके सामने वर्णन भी करेंगे। कल मुरली में बाबा ने कहा था, किसी के अवगुणों को देखकर तो क्या करना चाहिए, अवगुण को दिखाई देता है, सुनाई भी देता है, तो क्या करना चाहिए? किसी को याद है कल बाबा ने बताया था क्या करना चाहिए? गुणों का, शक्तियों का दान दे दो, सहयोग दे दो। तो गुण माना, हां उनके गलत काम है, गलत व्यवहार है, गलत बोल है, आप सहन करो, चुप रहो, स्वीकार करो, खोते वो उनके आचरण है, उनका अधिकार है, मुझे क्या करना है? शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इनको हम सुधार नहीं सकते, हमारे पास वो शक्ति नहीं है, वो आपके बच्चे हैं। आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, आप इसका कल्याण करो, ये शुभ भावना, ये सेवा, ये चाहे उनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, करने वाला वो है, वो देता है। इसलिए आप किसी भारत में किसी साधु संतों के पास जाते हो, वो क्या करते हो, कभी दुआ नहीं देता है। हमारे अंदर आज एक भावना आए, दुआ दे दो। दुआ क्या, हम आपके पास क्या है देने के लिए? नहीं, आशीर्वाद कहते हैं। कोई भी बड़े साधु संतों के पास जाओ, वो क्या कहते हैं? भगवान आपका भला करेगा, मैं भला करेगा नहीं। नहीं तो आज हमारे अंदर आया, किसी की सेवा करो, दुआ मिलेंगी, आप क्या दे सकते हो? हाँ, शुभ बाबा देगा, देने वाला दाता वो है। तो वो अगर है तो आपकी सेवा के अंदर उसकी शक्ति चाहिए। इसलिए कहा उसकी याद में करो, ज्ञान भी सुनाते हो, मुरली की पॉइंट भी सुनाते हो। आज शुभ बाबा ने मुरली में ये कहा था, मैं सुना रहा हूं नहीं, ए अहम आएगा वहां, ये मैंने सुनाया, मैंने सेवा किया, तो ये मैं और मेरा ये दो ही विघन है। इसलिए बार बार ज्ञान के पॉइंट सुनाओ। आज बाप दादा ने मुरली में ये सुनाया था, तो बाप दादा भी याद आया और सेवा भी हुई, आपका भी कल्याण, आपकी भी स्मृति जागृत हुई। नहीं तो व्यक्ति वैभव के आकर्षण में आते हैं, किसी के हाथ में नहीं आए, बहुत जन्मों के आदत बने हैं। इससे मुक्त होने के लिए सहज तरीका चाहिए ये याद। फिर योग है तो सर्व संबंधों से याद योग करो। बाबा मेरा साजन है, बाबा मेरा दोस्त है, बाबा मेरा टीचर है, सदगुरु है। देखो रोज हमको आके अलग अलग ज्ञान महारत्न, ज्ञान रत्न दान करता है। कहीं भी जाओ एक ही है, वही चलता रहता है, यहां रोज नए 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 महावाक्य सुनाता है। तो हमारा टीचर है, सदगुरु है, बैठ के उनका मंथन करते हो तो बुद्धि एक जगह जाती है। नहीं तो संसार में मामा काका बच्चे पोते इनके ही याद चलता है, तब का कर्म बंधन में आते हैं। हमारा एक के साथ संबंध हो। तीसरा कहा जो योग अग्नि तपस्या कहा, अभी समय परिस्थिति आप जानते हो हमसे भी ज्यादा, दुनिया में चारों तरफ युद्ध का माहौल है, किस समय परिवर्तन होगा पता नहीं, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। बाबा ही करता है, बाबा ने कहा मैं टचिंग देता हूं, समय नजदीक आया है। बाबा ने व्यवस्था भी बताया, पहले साकार में सन्मुख आके पढ़ाया, सन्मुख थोड़े बच्चों की पालना किया डायरेक्ट, फिर अव्यक्त पालना किया। अव्यक्त बच्चों की हम सब पालना किसके लिए? अव्यक्त बाप दादा की। अब देखो दोनों नहीं, अभी ज्ञान के द्वारा कर रहा है, वो भी अभी कम होती जा रही है मोबाइल के कारण। भाई सेंटर में देख लो, सेंटर में क्यों जाना चाहिए, मुरली क्यों सुनना चाहिए, मोबाइल पर सुनाई देता है, सोते सोते सुन लो, जैसे न्यूज सुनते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, तो वो भी अभी जा रहा है, सुनना इतना ही है। पहले देखो सेंटर में जाते थे डायरी पेन लेके जाते थे, अभी भी करते बच्चे, जाके बैठो मुरली के पॉइंट नोट करो एक दो पॉइंट, फिर आते समय चिंतन करते आते हो, कोई मिला उनको भी बताते हो, तब का लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे राजा। सिर्फ सुनने से नहीं, लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, सुनना पढ़ा नहीं, मोबाइल में मुरली है नहीं, हाथ से लिखना और मोबाइल में देखना उसमें अंतर है। तो ये कर्म है। तब का योग में बैठते हो 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, दो ही समय बाबा ने दिया, सारा दिन कर्म करो, सवेरे 15 मिनट आधा घंटा, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद 6 से 8 बजे तक आधा घंटा 15, रोज एक नियम बनाओ, 6 से 6:30, 6:30 से 7, 7 से 7:30, 7:30 से 8, ऐसे नहीं इसी समय बैठना चाहिए, समय नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो बाबा ने मार्जिन दिया 6 से 8 बजे के बीच में आधा घंटा निकाल को पहले से फिक्स रखते हो और एक शक्ति पर एकाग्र करते। अभी क्या ज्ञान आ गया है लेकिन ब्रिक पावरफुल नहीं है। हमारे सामने बहुत आत्माओं के स्वभाव संस्कार, आज बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार अलग अलग है, उनका अपना होगा, लेकिन मेरा धर्म कर्म क्या कहता है, मुझे क्या करना है, मुझे उनके अनुसार चलना है, उनके स्वभाव के अनुसार मुझे भी चलना है, उनके संस्कार कैसे भी वैसे मुझे भी करना है। नहीं, उन्होंने बोला इसलिए मैंने भी बोला, उन्होंने ऐसा किया मैंने भी ऐसा किया, तो ये ज्ञानी आत्मा के निशाने नहीं है, अज्ञान, ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं है, बुद्धि के अंदर वो दिव्यता नहीं आई अभी तक। क्यों? कि ज्ञान की धारणा नहीं, याद नहीं है। क्यों नहीं है? लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते है? अभी देखो किसी के घर में खाना कब बनाते हो, कोई मेहमान आने वाले तो बनाएंगे ना, अपने आप पकवान बना के खाएंगे नहीं, आज मेहमान आने वाले हैं। तो मुरली सुनते समय ही अपने अंदर एक जागृत करो, ये मुरली के पॉइंट इनको सुनाना है, इनको सुनाना है। डिमांड एंड सप्लाई कहा, तो आप और अंतर, हमारे में अंतर यही, हमें रोज मुरली के पॉइंट याद रखता है। क्यों? कि हमें सुनाना है, लक्ष्य है, सवेरे सुनाना है, दिन में शाम को कोई भी मिला मुरली के पॉइंट सुनाते हो, कैसे सुनाएंगे आप? तो कहा आप सप्लाई मतलब धारण करते हो, डिमांड है, इच्छा है हमको औरों को सुनाना, दान करना है, ये लक्ष्य रखते हो तो याद रहेगा। अब ये हमने मुरली सुनी बस इतना ही, याद क्यों रखना है? किसी को देना ही नहीं है, किसी को सुनाना ही नहीं है। हाँ आप कहेंगे मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है मुरली, बस इतना ही। अगर देने की आदत डालते हो, मुरली क्लास से बाहर जाते ही मुझे इनको बताना है, देखो दादी दीदियों ने भी ऐसे किया, देखो दादी भी मुरली क्लास होते ही कमरे में 10-15 मिनट बैठती थी और लेटर लिखती थी, लेटर में क्या मुरली के पॉइंट, फिर नाश्ता करते थे। हमने देखा जानकी दादी भी मुरली क्लास हुए, नहीं तो मधुबन में सभी दादियां थे, तो भी जानकी दादी मुरली क्लास के बाद 5-6 भाइयों को बुलाती थी अपने कमरे में, बैठती थी, मुरली के पॉइंट रिवाइज करती थी, उसका एक्सप्लेनेशन करती थी, उसके बाद जाके नाश्ता करती थी। तो ज्ञान अगर आप किसी को दान नहीं किया तो धारणा नहीं होती, याद नहीं रहता है। अगर सवेरे 1-2 को भी सुनाओ और रात को सोते समय देखना आप, याद करो आज बाबा ने क्या कहा था, तुरंत याद आएगा आज बाबा ने ये कहा। रिकॉर्डिंग होना चाहिए, वो तब होता है, सुनने से नहीं। सुनने के बाद 3 काम करना पड़ता है, सुनो, लिखो और 1-2 को भी तो वर्णन करो, आज बाबा ने ये कहा, तो अच्छी तरह से रिकॉर्ड हुआ। तो आपको सारा दिन कर्म करते समय भी कोई भी गलत काम करने की प्रेरणा आएंगी, विचार आएगा, नहीं ऐसे नहीं, तुरंत बुद्धि कहेंगी ये नहीं कहना, ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। तब बाबा ने व्यवस्था बताया, खाना भी सामने आया तो दृष्टि दे दो, ये आंखों की दृष्टि नहीं, बुद्धि, बुद्धि नेत्र से देखो, ये खाना किसने बनाया, कैसे बनाया, ये खाएगा तो क्या होगा। तो देखकर बाबा को याद करके खाओ, क्यों? जैसा अन्न वैसा शरीर। ये शरीर के अंदर अलग अलग बीमारी कहां से आई? अन्न की स्वच्छता नहीं है। तो कहा बाबा की याद करो, तो बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि वो तुरंत बताता है ये ठीक नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाएगा तो ऐसा होगा। तो हर प्रकार के बाबा ने संसार में अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए विधियां बताई है। संसार में रहो, छोड़ो नहीं कहा, सब कुछ करते रहो, लेकिन उसके लिए ज्ञान सुनाया किस समय क्या करना है। मुरली के समय पर मुरली सुनो, खाने के समय पर खाना खा लो, सोने के समय पर सो भी जाओ, सोना भी चाहिए। ऐसा नहीं आज मैं सोते नहीं तो खाना हजम नहीं होगा, शरीर को रेस्ट भी चाहिए, नींद भी चाहिए। आज स्नान ही नहीं करो नहीं, शरीर को रोज स्नान भी करना है। हर चीज बताया किस समय क्या करना है, कैसे करना है। तो इसको कहा कि ये दैवी गुणों की आचरण, दैवी गुण कैसे आचरण में लाना है, ये डिवाइन लाइफ स्टाइल है ये। तो बाबा देवता सद्देवता बनाने जा रहे हैं हमको, सत्युग में लेके जा रहे हैं। जाने से पहले सबको उठा के नहीं ले जाएगा, देखेगा योग्य पात्र चाहिए, इसलिए कोटों में कोई है। तो आप पूछो उस कोटों में मेरा नाम होगा। किसी ने बहुत अच्छी बात बताया, रोज भगवान के दरवाजे पर जाके मांगते हो, बाबा भगवान मेरा ये काम करो, भगवान मुझे ये मदद दे, तो मांगना ही आता है। कभी भगवान आपको याद करता है? भगवान को मेरे बच्चे याद है, तब का बाप के दिल तख्त नशीन। कौन है वो तो पूछो, शिष्य बाबा को, मेरे बाप दादा को मेरी याद आएंगी? अगर आप उदाहरण पूछेंगे, ऐसा कोई है जिसने बाप दादा ने बच्चों को याद किया? आप में से कोई जानते हो? बताओ। हाँ बताओ किसको। हाँ देखो इसको याद है, मधुबन में ओम शांति भवन, मधुबन में ओम शांति भवन में बाबा मुरली चला रहे थे। मुरली चलाते चलाते एकदम बंद हो गया, तो सबको लगा माइक डिस्कनेक्ट हो गया, माइक बंद हो गया। एक सेकंड के बाद बाबा ने कहा, तुरंत बोलना शुरू किया, देखो जगदीश बच्चा अमेरिका में गया है कॉन्फ्रेंस में, स्टेज पर चढ़ रहा है, बाबा को याद करके स्टेज पर चढ़ रहा है। तो बाबा को देखो, वहां का आवाज संकल्प यहां पहुंचता है, वहां उसने याद किया। देखो इसको कहा दिल की तार, कितना प्यार बाप। देखो उनके बच्चे कहीं भी दुनिया में, आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं भी हो, बाबा चक्कर लगाता है, हर एक बाबा के बच्चों पर नजर है। जैसे स्कूल में भी देखो, टीचर जब पढ़ाता है उसकी नजर बार बार उसी बच्चे पर जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनता है। बाकी इधर उधर जाता है उनको भी देखता है, ध्यान नहीं देता उधर, पता है ये बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है, उसकी नजर से नजर मिली रहती है। तो ऐसे ही अनन्य बच्चों के ऊपर बाबा की नजर रहती है, दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर आपको बताओ, हमारा भी बताओ, हम देखो यहां से भारत से 22 घंटे दूर डेनिंगडन करके है, वहां थे ऑस्ट्रेलिया के और भी बाद न्यूजीलैंड उसके भी आगे, तो वहां हम थे, यहां जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा, तो दादी ने स्वयं दादी ने फोन किया। तो हम उस समय मुरली सुना रहे थे सेंटर में, तो बहन जी ने कहा दादी का फोन है, हमने कहा मुरली के बाद करते हैं। तो मुरली के बाद दादी ने ही, उन्होंने कहा अभी मुरली सुना रहे, दादी ने दोबारा फोन किया, और हमने कहा इतनी दूर, दादी ने कहा आप आ सकते हो, हमने कहा दादी उधर से अभी भी निकलो तो भी 24 घंटे चाहिए, तो हम 2 दिन बॉडी को रखेंगे, आप नहीं आ सकते हो, आप अपने समय के अनुसार आओ। देखो ये दादी को नहीं तो कौन फोन करेगा, परिवार अपनापन। यहां से स्वयं दादी ने, किसी को नहीं बताया, उस समय सब बिजी है, स्वयं दादी ने अपने आप यहां से वहां फोन करके बताया। तो बाबा को भी अनन्य बच्चों के ऊपर बाबा की नजर है, कहीं भी रहो उनको वो याद आता है। नहीं तो उस समय इतना भीड़ है, इतने लोगों को बोलना है, हम कहां याद आएगा। तो ये जितने लोग याद करते, देखो बाबा ने तुरंत मुरली रोक कर कहा जगदीश बच्चा याद कर रहा है, तो बाबा की नजर है ना, है ना, वाइस प्लस वायरलेस काम करता, दुनिया के किसी में लो, लेकिन सिर्फ योग्य पात्र बनो। योग्य पात्र बनना मतलब भगवान के काम में आ जाए हम। तो बाबा कहते दुनिया में सब कुछ सभी दे रहे हैं, लेकिन संगम पर मुझे बच्चों का पवित्र शरीर चाहिए, शुद्ध मन बुद्धि चाहिए, जिस मन बुद्धि में और कोई किचड़ा ना हो। तो उस दोनों मन बुद्धि से, जैसे पवित्र शरीर पवित्र हाथ से दान करेंगे, अगर आपको पता हो बाबा ने भी मम्मा के हाथ से अंत में अंगूर सबको खिलाया। मम्मा के हाथ में बाबा दो दो अंगूर देता था और मम्मा के हाथ में लास्ट में अंतिम मम्मा के हाथ द्वारा बाबा देता था। तो शिव बाबा भी चाहता है मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे दो पवित्र हाथ चाहिए, ऐसे मन बुद्धि चाहिए, उनके द्वारा मैं सेवा करूं, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है। तब का बच्चों के, मुझे बच्चों के बिगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। भले सर्वशक्तिवान हूं लेकिन बच्चों की मदद चाहिए, कौन करेगा? वो योग्य पात्र है। नहीं तो सभी कहते हम भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन योग्य पात्र चाहिए। योग्य पात्र की निशानी जिसका जैसे स्थूल में दो हाथ स्वच्छ हो। जैसे कोरोना के समय पर आप जानते हो तो बार बार सैनिटाइज करो, कहा बार बार हाथ धो लो। क्यों? कुछ लगा ही नहीं है, क्यों साफ करना चाहिए? सूक्ष्म जर्म्स है। मन अपने आत्मा के लिए, मन और बुद्धि ये दो हाथ है आत्मा के, ये दोनों हाथ अगर स्वच्छ है, बाबा इन दोनों हाथों से सेवा करना चाहता है। तब का मन बुद्धि को स्वच्छ करो, उसकी विधि बताया। एक मन के द आज मुरली सुनी, नोट करो। सवेरे से शाम तक तो कोई भी मिलता है बात करो जरूर, फोन से भी बात करो, लेकिन एक मुरली के पॉइंट फोन से बात करने के बाद पढ़ करके उनको बताओ आज बाबा ने ये कहा था। जो उन्होंने कुछ इधर उधर के समाचार सुनाया, नेगेटिव आया नहीं, ऐसा नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं सुनाएगा, लेकिन आप पॉजिटिव दे दो। पॉजिटिव माना ये साबुन है, जो उन्होंने गलत सुनाया वो सब साफ हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव दिया, आपने शुभ संकल्प दिया, शुभ विचार दिया, तो प्रभाव नेगेटिव का अशुद्ध जो संकल्प दिया उन्होंने वो साफ हो जाएगा। नहीं तो अशुद्ध का जो हम सुनते उसका प्रभाव पड़ता है। आप देख लो, अभी भी आप आकर के दो दिन हुए, किसी ने भी आज कल की मुरली, आज की मुरली किसी को सुनाया? बात तो किया है, ऐसे नहीं कोई किसी ने मौन रखा, मौन रखा तो अपने लिए रखा, लेकिन सेवा, आज आपने कहा बाबा ने कहा मनसा सेवा, किसी को देखते ही पूछना मेरे मन में क्या याद आया, मेरे बुद्धि में क्या याद आया, दिल में क्या याद आया, इनको देखते ही या पुरानी बात याद आई, या कोई शरीर का संबंध याद आया, पुराने संस्कार याद आया, इसको कहा याद। देखते ही अगर इनको बाबा के मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, ये याद अगर आता है, चेकिंग करके देख लो, 100 लोगों को आपने देखा लेकिन एक दो को देखते ही आपके अंदर याद आई इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, वो ब्राह्मण है। इसको बाबा ने और शब्दों में कहा, शुभ वृत्ति से अशुद्ध वृत्ति को भी परिवर्तन कर सकते हो। अगर उनके अंदर आपके लिए गलत विचार चल रहा था, गलत बातें याद आ रही थी, लेकिन आपने क्या किया उनको देखते ही, अरे इनको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, शुभ बाबा का ज्ञान का पॉइंट सुनाना चाहिए, ये आपकी शुभ वृत्ति उनके नेगेटिव भाव को भी, वृत्ति को भी परिवर्तन करता है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को पहले परिवर्तन करो, स्वयं के अंदर धारणा करो, स्वयं को याद रखो, चेकिंग करो, उनको परिवर्तन करना नहीं जाओ। अगर आपकी वृत्ति मतलब बुद्धि के अंदर स्वच्छता है तो वो स्वच्छ वाइब्रेशन उनको भी परिवर्तन करता है। जैसे आप जानते होंगे दुनिया में देखो कोई चोर है, चोरी किया है वो जाता है रस्ते पर, एक पुलिस अगर दूर से जाता है पुलिस को कुछ पता नहीं, वो अपने काम से जा रहा है, लेकिन इधर इसका दिल धड़कता है। क्यों धड़कता है? अरे पुलिस शायद मुझे पकड़ के नहीं तो नहीं आया, वो तो अपने काम से जा रहा है, इसको डर है। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर शुभ वृत्ति है, बुद्धि में ज्ञान है, आपके वाइब्रेशन को ज्ञान का पॉइंट सुनाना चाहिए, आपके वाइब्रेशन काम करते हैं, इसको कहा अशुभ वृत्ति उनकी है, लेकिन आप अपने शुभ वृत्ति से उनको परिवर्तन करते हैं। तो स्मृति से वृत्ति, स्मृति चाहिए। तब का सब प्रकार के मोह को मिटाना चाहते हो तो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, कहा स्मृति मना याद। तो ये चेकिंग करो कि रोज मुरली सुनी इतना ही सब कुछ नहीं है। मुरली सुनने के बाद रात को आप सोने जाते हो, अपने आप से अपनी परीक्षा ले लो, अपने टीचर बनो कि आज बाबा ने सवेरे मुरली सुनाई थी मुझे याद है, एक शब्द भी याद आया तो समझना मेरे अंदर धारणा है, ज्ञान की धारणा है, बुद्धि स्वच्छ है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो हमको गलत काम करना नहीं देगा। अगर माँ के साथ बच्चे हैं तो माँ बाप बच्चों को गलत काम करना नहीं देंगे, माँ गुरु है। बच्चे ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना, तो माँ गुरु सिखाती है। तो हमारे पास सर्वशक्तिवान बाप और दादा दोनों है, माँ बाप दोनों है, अगर उनको बुद्धि में रखो, याद रखो, इसको कहता कंबाइंड रखो, कंबाइंड वो हमारे साथ कहां रहेंगे, उसको कहां देखा ही नहीं है, तो ये याद आज बाबा ने ये कहा था, ये बुद्धि में अगर चलता है संसार में सेवा करो, 24 घंटे करो। अभी यहां भी आप सेवा के लिए आए हो, सेवा करो, करते हुए पूछो हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसके श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, आज बाबा ने क्या उसका मंथन करते हुए याद करते वरते कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म जमा कर रहे हो, ये भाग्य जमा कर रहे हो, ये अनेक जन्मों का पुण्य जमा कर रहे हो। नहीं तो साधारण कर्म लेबर भी करते हैं, 100 रुपए लेते हैं, है ना, हमने भी कर्म किया, क्या हुआ उनमें और हमारे में अंतर क्या है, कर्म वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम श्रेष्ठ स्मृति से कर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर है, कैसे कर्म कर रहे, नहीं तो कौन सर हर एक व्यक्ति कर्म करता है, तो कहा श्रेष्ठ स्मृति चाहिए, इसको ही याद बाबा ने कहा, शास्त्रों में स्मृति कहा, यहां याद कहा, बाकी लोगों ने योग कहा, तो इसलिए याद क्या है, योग क्या है, तपस्या क्या है, जब योग में बैठते हो अमृत वेले शाम को तपस्या है, क्यों करते हो, आज बाबा ने पूछा यहां क्यों आए हो, हां यहां पतित आत्मा को पावन बनाने आए हो, ये रूहानी हॉस्पिटल है, ये कोई पूछेगा आप कहां जा रहे हो, कहते हैं हॉस्पिटल में जा रहे हो, कौन सी बीमारी है, हां शरीर की बीमारी है तो ये हॉस्पिटल ठीक करता है, और ये आत्मा की बीमारी ठीक करता है, तो आत्मा के अंदर पाप आत्मा पुण्य आत्मा कैसे कह सकते हो, अगर किसी को शुगर की बीमारी है डॉक्टर तुरंत दिखाता है, तो यहां बता सकते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा बता सकते हो, हां बता सकते हो, क्यों नहीं, जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो स्वप्न कहां से आते हैं, बाहर से आया, आत्मा ने शरीर में रहकर जो जो कर्म किया वो सब भरा हुआ है संचित कर्म का, और उसमें से हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं, 2 प्रकार का चलेगा खाने के और कोई देखने का, काम और क्रोध का स्वप्न आता है उसका नाम पाप आत्मा, अगर वो संस्कार लेकर के आप जा सकते हो सोच लो, तब कहा बाबा ने काम और क्रोध नरक के द्वार, शास्त्रों में भी कहा, यहां भी एक बाबा कहता है, तो उसको मिटाने के लिए ये योग अग्नि चाहिए, और योग अग्नि 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 15 मिनट रोज सवेरे शाम को 2 टाइम अपने लिए निश्चित रखो, अगर बाबा से वर्षा लेना चाहते हो, क्योंकि क्रोध का अंश भी रहा तो भी आप सत्युग में जा सकते हो, हाँ गुजरात वाले नजदीक है जा सकते हैं, हाँ क्योंकि पड़ोसियों को कभी मदद किया जाता है ना, पड़ोसी है चलो हमारे पड़ोसी है जाने दो, अभी भी ऐसे करते पुलिस वाले क्या करते हैं, कोई भी गाड़ी को रोकता है, अरे नहीं ब्रह्मा कुमारी की गाड़ी जाने दो है ना, रोकते नहीं है, अभी भी हम देखते हैं गुजरात से कोई किधर से जाओ तो देखते ब्रह्मा कुमारी की गाड़ी है, ब्रह्मा कुमारी के जाओ, तो ऐसे पड़ोसियों के भी कोई कुछ देना पड़ेगा ना, तो ऐसे गुजरात वालों को थोड़ा क्रोध भी रहेगा तो चलेगा, हाँ बाबा कहेगा ये तो हमारे पड़ोसी है जाने दो, हाँ सोच लो तो बाबा ऐसे छुट्टी देगा, हाँ देगा गुजरात वालों को देगा, बाबा ने कहा जब भी सेवा की जरूरत पड़े पड़ोसियों को बुलाओ तुरंत आ जाते हैं, ट्रेन की बुकिंग करने की भी जरूरत नहीं है, हाँ जब चाहे तुरंत आ सकते हैं, तो तुरंत जो मदद करता है तो बाबा भी कुछ मदद करेगा ना, जो जब भी बुलाओ अगर किसी की सेवा की मधुबन में जरूरत है गुजरात वालों को बोलो तुरंत आ जाते हैं। तो तुरंत जो मदद करता आए वेले में तो उनको बाबा को भी कुछ कंसेशन देना पड़ेगा ना, इसलिए गुजरात वालों को मिलेगा। हाँ ऐसा नहीं मिलेगा, अगर बाबा कहेगा मेरे अच्छे बच्चे लाडले सहयोगी स्नेही बच्चे हैं तो उनको देना पड़ेगा ना, मदद तो करना पड़ेगा। हिम्मत है बच्चे, बाबा ने कहा मदद करता है। ठीक है, अभी आप 5 मिनट देख लो, अपने जांच करो मेरे अंदर कौन सा संस्कार है। अभी अंतिम समय आया है तो यहां ही देख, बाबा को देख के जाना। जाते समय लिखकर बाबा के भंडारे पैसे डालते हो, बाबा कोई गरीब बाबा थोड़ी आई है, ये साजन साधक जैसे मंदिर में जाते 5 पैसा 10 पैसा मंदिर में रखते, भगवान गरीब है ना, जैसे भीख मांगने वाले को देते। बाबा कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप अपनी कमी कमजोरी लिखकर बाबा के भंडारे में डाल के जाओ। तो बाबा ने कहा बाप आया ये, बेल का पत्र लगाते ना शिव पर, बेल का पत्र चढ़ाते हो, अपनी बुराई क्रोध को एक क्रोध को 1 महीने छोड़ दो, ये क्रोधी सारी बीमारी सारे पापों का कारण है। आप इस पर सोचना, क्रोध आता है गलत विचार चलते हैं, पहले एसिड निकलता है, खून पतला होता है गर्म हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, सारी बीमारी एक के साथ एक है क्रोध। तो उसकी तैयारी करो, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए इतना नहीं, उसकी भी दवाई है। तो दवाई आपको पहले दिया, 1 मुरली के पॉइंट 10-15 दिन लिख के रखो, सवेरे से शाम तक 2-3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 2-3 लोगों को दान करो, देखो 10-15 दिन करो, ये संजीवनी बूटी है, अपने आप क्रोध को मिटाएगा। तो क्रोध करने का कारण बेहोश में करते हैं हम, होश नहीं है। ये संजीवनी बेटी मुरली संजीवनी बूटी है, बार बार सुंगाते हो सवेरे दिन में शाम को, याद करते हो दान करते हो, तो आपको सदा होश में रखता है, जागृत रखता है। जागृत तो व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करता है, तब आप पश्चात अरे मैंने क्या किया क्या बोल दिया, तो पश्चाताप होता है। इसलिए सावधान रखना है, उसके सॉल्यूशन निवारण 1 मुरली के पॉइंट रोज रखो, यही एक ही दवाई है। अच्छा आज बाबा ने कहा याद एक ही निवारण है सब बातों के लिए, याद। ठीक है, ओम शांति।
तुम
को तेरा प्यार।